ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। कोलकाता में सियालदह की सत्र अदालत ने आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। अदालत ने पिछले शनिवार को संजय राय को इस मामले में दोषी करार दिया था। पिछले साल 9 अगस्त को महिला प्रशिक्षु डॉक्टर का शव आरजी कर मेडिकल कॉलेज के एक सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था। इसके अगले दिन कोलकाता पुलिस ने संजय राय को गिरफ्तार किया था। बाद में उसे सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोलकाता की सत्र अदालत के फैसले का स्वागत किया है। आयोग ने कहा कि यह सजा समाज में न्याय की भावना पैदा करेगी और सभी को याद दिलाएगी कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि खिलौना बनाने के क्षेत्र में प्रगति ने सरकार के आत्मनिर्भरता के प्रयासों को बढ़ावा देने के साथ साथ देश की परंपराओं और उद्यमिता को भी लोकप्रिय बनाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मन की बात अपडेट्स द्वारा साझा की गई एक पोस्ट का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम के एक एपिसोड में उन्होंने देश में सामूहिक प्रयासों से खिलौना बनाने की परंपरा को बढ़ावा देने के लिए कहा था। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज कहा कि श्रम बोर्ड जल्द ही गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाएगा। उन्होंने नई दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन समारोह में ये बात कही।
हमने हमारे लेबर कोड में गिग वर्कर्स के लिए और गिग वर्कर्स की डिफिनेशन भी आइडेंटिफाई करी है और शॉर्ट टाइम में ही हम गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के अंदर लेके आएंगे। जो देश में आज 7 और 8 मिलियन से अबव उसकी संख्या हो चुकी है। जो सेक्टर में नया सेक्टर है उसको भी इस सेक्टर में काम करने के लिए भारत ने ऑलरेडी पहल चालू कर दी है।
आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रम और रोजगार सचिव सुमिता डावरा ने बताया कि सेमिनार में भारत के 60 करोड़ कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत लाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन था। 70 सीटों की विधानसभा के लिए 719 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार 1522 नामांकन पत्रों में से 477 रद्द कर दिए गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा और मतगणना 8 फरवरी को होगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में आतंकवाद रोधी अभियान में सेना का एक जवान शहीद हो गया। सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। अभियान का आज दूसरा दिन है। उन्होंने बताया कि सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त बलों ने सोपोर के जालूरा गुजरपति इलाके में घेराबंदी की को और मजबूत कर दिया है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में यूसीसी के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी का लागू होना देश के बाकी राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो गई है। 5 दिन के इस आयोजन में समावेशी विकास और डिजिटल क्रांति के भारतीय मॉडल का विशेष रूप से उल्लेख होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, नागरिक उड्डयन मंत्री के रामोहन नायडू, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी के साथ भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की उपस्थिति में होगा। शपथ ग्रहण समारोह में अनेक विदेशी राजनेताओं के शामिल होने की संभावना है। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से आज मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति और क्वाड से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से भी मुलाकात की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।